नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई को करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। राज्यों को जमाखोरी, हेराफेरी और घबराहट पैदा करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि सभी तेल शोधन कारखाने उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक में किए गए सुधार कानूनों को सरल बनाने, व्यवसाय और व्यक्तियों पर कानूनी नियमों, सरकारी नीतियों तथा कर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय, वित्त और प्रशासनिक दबाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने ये बात कही।
हमने एक ही कानून के अंतर्गत संसद के 79 अलग अलग अधिनियमों से संबंधित 1000 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाकर सरल बनाया है और आम आदमी, लघु और मध्यम उद्यमों, उद्यमियों, स्टार्टअप और व्यवसायों के लिए इसे आसान बना दिया गया है। वास्तव में ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
In our journey towards Viksit Bharat 2047.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने मालदा जिले में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मुख्य षड्यंत्रकर्ता सहित 2 लोगों को सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मुफक्रुल इस्लाम के रूप में हुई है। पुलिस अपर महानिदेशक के जयरामन ने बताया कि मुफक्रुल इस्लाम उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार का रहने वाला है और वर्तमान में कोलकाता में रह रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी है। इससे पहले कल सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों का घेराव करने के मामले का संज्ञान लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन अविनाशी से, डॉक्टर तमिल साई सौंदर्य राजन मायालापुर से और वान थी श्रीनिवासन कोयम्बटूर उत्तर से चुनाव लड़ेंगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव इस महीने की 23 तारीख को होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय घोषित किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में आयोग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इसके बाद आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया गया और एनसीईआरटी को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। विशाखापत्तनम में अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस तारागिरी को आज नौसेना में शामिल किया गया। मंजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का चौथा पोत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की थी। पश्चिम एशिया संघर्ष का आज 35वां दिन है। अमरीका और इसराइल ईरान और उसके सहयोगी पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। खाड़ी देशों में सैन्य प्रतिष्ठानों के अलावा नागरिक और औद्योगिक ढांचों पर भी हमलों की खबरें हैं। इससे दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति में रुकावट आई है। सऊदी अरब ने पिछले कुछ घंटों में 7 ड्रोन को मार गिराया है। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मालदीव के माले में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।